अरहंत शब्द के मूलाचार ग्रंथ में कुछ और भी अर्थ प्राप्त हुए हैं, उनको बताकर फिर जो एक अनुत्तरित प्रश्न था कि भगवान के ऊपर पार्श्वनाथ जिनेंद्र पर फणा होना उचित है अथवा नहीं, इस पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम मूलाचार ग्रंथ की उस गाथा को देखते हैं। षट आवश्यक अधिकार है जिसमें मुनिराजों के छह आवश्यक प्ररूपित हैं। वहां आचार्य कह रहे हैं तीर्थंकर को तीर्थंकर क्यों कहते हैं, इसका समाधान कर रहा है, और तीर्थंकर को अरहंत भी क्यों कहते हैं, इन सब प्रश्नों का समाधान करते हुए बहुत सुंदर वर्णन है। 561 गाथा से लेकर कुछ गाथाओं पर्यंत ये विवरण है। दाहोपशमन तन्ना खेदो मल पंक पवहन चेव तिह कारणी ही जित्तो तम्मा तंदवदो तिथम। तीर्थ शब्द का अर्थ नदी का तट होता है, और यहां कह रहे हैं कि वहां पहुंचने वाले का जो संताप है, जो उसके भीतर दाह है, उसका शमन हो जाता है, उसका संताप शांत हो जाता है। नदी के किनारे पहुंच जाओ तो फिर वो जल का जो प्रवाह चल रहा है उसके निकट आने पर गर्माहट शांत हो जाती है। और क्या होता है, एक कार्य तो ये हुआ कि तट पर आने पर दाह का प्रशमन होता है, दाह शांत होती है। दूसरा कारण तन्ना छेदो, प्यास नष्ट हो जाती है, जलपान करने मिल जाता है तो प्यास शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और मल पंक पवहनं चेव, जो मैलापन है अथवा जो कीचड़ वगैरह लगा है उसका शोधन भी हो जाता है। और यही स्थिति तीर्थंकर के पास आने पर भी होती है, इसलिए दव्वदो तीर्थम, वे द्रव्य की अपेक्षा से तीर्थ रूप है, भाव की अपेक्षा से बाद में बताएंगे। क्या है, ती कारणी ही जुत्तो, तीनों इन कारणों से जिनेंद्र भगवान युक्त होते हैं। तीर्थंकर के पास जाओगे तो जो दाह है, जो संताप है, वो शांत हो जाएगा, जो तृष्णा है वो शांत हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, और जो मल और पंक है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म है, वो भी भगवान के सानिध्य में उनका भी शोधन हो जाएगा। तम्मा तम दव्वदो तीर्थम, इसलिए वे द्रव्य की अपेक्षा से तीर्थ रूप है। फिर भाव तीर्थ का अर्थ बताएं, गाथा 562 मूलाचार ग्रंथ में, देन शरणान चरिते निजुत्ता जिणवराद सवेवी ती कारणी ही जुत्ता तम माते भाव दो तिथम। दर्शन से सारे जिनवर अभी तीर्थंकर दर्शन से निर्युक्त होते हैं, अर्थात क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर सारे तीर्थंकर ज्ञान से निर्युक्त होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। और सारे तीर्थंकर यथाख्यात चारित्र से निर्युक्त होते हैं, यानी क्षायिक चारित्र से संपन्न होते हैं। तो इन तीनों कारणों से जिनेंद्र भगवान युक्त होने के कारण ये तीनों भाव माते भाव तीर्थम, इसलिए वे भाव से तीर्थ, वे द्रव्य से तीर्थ क्यों है? क्योंकि नदी के तट पर पहुंचने वाले को जिस प्रकार ठंडक मिलती है, जिस प्रकार उसकी प्यास का शमन हो जाता है, और जिस प्रकार वो स्नान आदि करके अथवा हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के चरणों में आने पर दाह शांत होती है, आकुलता चली जाती है, प्यास नष्ट हो जाती है, अर्थात सांसारिक विषयों की जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाती है और शुद्धिकरण हो जाता है। उनके पास आने से अपन पवित्र हो जाते हैं, इसलिए वो द्रव्य से तीर्थ है। और भाव से तीर्थ इसलिए है क्योंकि उनके अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन है, उनके अंदर क्षायिक ज्ञान है, और उनके अंदर क्षायिक चरित्र है, इसलिए वे भाव से तीर्थ है। और वे सबको अपने समान कर डालते हैं। तीर्थकर, तीर्थस्य करोति इति करह, तीर्थस्य करह तीर्थकरह, तो तीर्थ के कर्ता होने के कारण तीर्थकर कहलाते हैं। फिर अरहंत क्यों कहलाते हैं? तो बता रहे, जिद को माण माया जिद लोहा ते जिद लोहा तेन तेजिना होंती हंता आरिंच जम्मम अरहंता तेन वच्चंती। क्रोध मान माया लोभ को जीत लेने के कारण वे जिन होते हैं। देखिए तीर्थंकर को जिन क्यों कहते हैं, उसका उत्तर दिया कि क्रोध मान माया लोभ के विजेता होने के कारण वे जिन होते हैं। और अरिंच जम्मम हंता, शत्रु का और जन्म यानी संसार का हनन करने के कारण, संसार का हनन करना इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना, जगत का हनन करना, जगत अलग है और संसार अलग है। इसलिए 12 अनुप्रेक्षाओं में आप देखना, तीसरी अनुप्रेक्षा संसार अनुप्रेक्षा है और 10वीं अनुप्रेक्षा लोकानुप्रेक्षा है। तो यदि संसार और लोक एक होते तो फिर अनुप्रेक्षाएं दो क्यों होती? तो संसार जो है, संसरणम संसार है, चतुर्गति भ्रमणम इत्यर्थ, चार गतियों में भटकने का नाम संसार होता है। और लोक तो वो इलाका है, वो भटकने का स्थान है, वो क्षेत्र है, जिसको जगत कहते हैं। गच्छति इति जगत, ये संस्कृत व्याकरण में इसकी उत्पत्ति होती है, चालू ही रहता है हमेशा, ये जगत कभी ऑफ नहीं होता इसका बटन। चेरिल रिचार्डसन ने अपने एक लेक्चर में कहा था, स्पिरिचुअल टीचर है, उसने कहा था कि कई बार अपनी जिंदगी के कुछ दिन ऑफ जैसे लगते हैं, कभी कभी लगता है कि ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, ये बिल्कुल लाइट गोल है ऐसा लगता है, अपनी लाइफ की लाइट गोल हो गई ऐसा लगता है, बिल्कुल खाली खाली सा, एकदम सुना सुना सा, अवसाद जैसा, डिप्रेशन जैसा लगता है। तो उसने एक बहुत सुंदर बात कही थी, बात बात में बात निकली है तो फिर वो बात भी यहां सामने रख देते हैं कि कभी किसी को ऐसा लगे तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि जब मुझे एक दिन ऐसा लग रहा था कि ये सप्ताह तो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल ग्लूमी है, बिल्कुल अंधकार में है, ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, तब मेरे पति ने मेरा गुरु बनकर मुझे एक रजिस्टर दिया और रजिस्टर देकर के कहा कि अपने जीवन की 20 अच्छी बातों को तुम लिखो इसमें, जो 20 अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें जीवन में प्राप्त हुई है उसको तुम लिख दो यहां पर। मैंने जैसे ही उन 20 चीजों को लिखा तो मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया, मुझे लगा कि मेरा जीवन डार्क नहीं है। अब अपने को तो 24 जन्मजात मिले हुए तीर्थंकर, तो जैन लोग कैसे डिप्रेशन में आ सकते हैं? जो पाया है उसको देखो, तो जो खोया है उसका गम दूर हो सकता है। तो ये जो संसार होता है, ये चारों गतियों में भटकने का नाम है, और लोक जो है वो जगत, गच्छति इति जगत, ये कभी ऑफ नहीं होता। अपने जीवन के कभी कभी कुछ बटन बंद हो जाते हैं, लेकिन ये दुनिया चलती ही रहती है, ये जगत चलता ही रहता है। लोग संसार और जगत को कभी कभी एक मान लेते हैं, वास्तव में इस जगत में ही तो अपना संसार बसा हुआ है ना, अपन कहां संसरण कर रहे हैं, जगत में ही तो अपन भटक रहे हैं, पर वास्तव में वो स्थान है और संसार जो है वो अपनी भटकन है। दोनों में अंतर है, चार गतियों में भटकने का नाम संसार है, और फिर जो क्षेत्र है उसका नाम जगत, उसका नाम लोक है। तो यहां क्या कह रहे हैं, जम्मम हंता, अरहंत क्यों कह रहे हैं उनको, क्योंकि वो अरिम च, अरि यानी मोह और च यानी रज और रहस्य, अरि रज और रहस्य के हंता होने के कारण अरहंत है, और जम्मम हंता संसार का हनन करने के कारण भी अरहंता है। तेन उच्चंती, इसलिए उनको अरहंत कहते हैं। जन्मन संसार से चंतारहंत इत्युच्यन्ते, अच्छा वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती टीका में यही लिख रहे, यस्मात् जित क्रोध मान माया लोभास तस्मात् तेन कारणेन ते जिनाः, क्रोध मान माया लोभ को जीतने के कारण वे जिन है। जी धातु से जिन शब्द बना है, जी का अर्थ होता है जीतना। इति भवन्ति, फिर येन अरीणाम हंतारः जन्मन संसारस्य च हंतारः तेन अर्हन्त इत्युच्यन्ते। अब जिस कारण से वे अरियों के हंता है, अपने संसार भ्रमण का हनन करने वाले हैं, इसलिए अरहंत इत्युच्यन्ते, अरहंत कहलाते हैं। तो येन च, और कह रहे हैं, अरिहंति वंदन नमन सणाणि अरिहंति पूय सत्कार अरिहंति सिद्धि गमनम अरहंता तेन उच्यन्ति। अब वो अरहंत शब्द का अर्थ हो गया था, अब अरहंत शब्द का अर्थ होता है, प्राकृत में तो अरहंत ही बन रहा है, बोलते हैं कि जो वंदना और नमस्कार के योग्य हो जाते हैं, जो वंदना और नमस्कार के योग्य हैं, वो नियम से अर्चना और पूजा के योग्य भी है। इसको यहां पर अपने को अध्याहार न्याय से ग्रहण करना होगा, अध्याहार पूर्वक ग्रहण करना होगा। जो वंदना और नमस्कार के योग्य होते हैं तो अर्चना और पूजा के भी योग्य होंगे, लेकिन अपने को अध्याहार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य महाराज स्वयं इसके आगे उसका उल्लेख कर रहे हैं। अरिहंति पूय सत्कार, पूजा और सत्कार के योग्य होते हैं, वंदना और नमस्कार के योग्य होते हैं, पूजा और सत्कार के योग्य होते हैं। पूजा का अर्थ क्या है? भगवान के पूजा की परिभाषा जो दी है शास्त्रों में, उस शास्त्रीय परिभाषा को यहां पर प्रस्तुत करना इस समय अपेक्षित लग रहा है हमें, क्योंकि पूजा तो सब लोग अपने अपने ढंग से पूजा 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 जानते ही हैं। यहां पर आचार्यों ने क्या परिभाषा दी है पूजा की, उसको एक बार समझ लेते हैं। हमें षटखंडागम पुस्तक 8 पृष्ठ 92 छखंडाग में बंद स्वामित्व विचय, बंद स्वामित्व विचय नाम का जो षटखंडागम का तृतीय खंड है उसमें ये वर्णन है, परिभाषा बता रहे। चरु बलि पुप फल गंध धूव दीवादी सगभत्ति पगासो अचनाणाम ईदा ही सह ऐंद धय कप्परुख महामह सब्वदो भद्दादि महिम विभाणम पूजा नाम। सावधानी से सुनिएगा, अर्चना और पूजा का यहां पर स्वरूप बता रहे हैं आचार्य महाराज, लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चरु बलि, बलिर नैवेद्यम, बलि का अर्थ नैवेद्य लेना, और चरु का अर्थ क्या लेना कि भात आदि अनाज में घी और दूध आदि से बनी हुई जो खीर वगैरह होती है, ऐसे जो मिष्ठान पकवान होते हैं उपलक्षण न्याय से, वो फिर पुप यानी पुष्प, प्रसून, कुसुम, फुल, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द है, पुष्प। फिर फल, फल का अर्थ भी अपन जानते हैं, लेकिन यहाँ फल में ड्राई फ्रूट्स को नहीं लेना। ड्राई फ्रूट्स जो है वे एक पश्चिमी संज्ञा है, वस्तुतः वे फ्रूट्स नहीं होते। जिनको आप ड्राई फ्रूट्स कह रहे हैं ना, वो वास्तव में सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। आप देखिए बादाम, जिसको आप ड्राई फ्रूट्स के भरोसे फल मानकर चल रहे हो, वो वास्तव में फल है ही नहीं, वो तो बीज है। इसी तरह अखरोट है, तो अखरोट जो है वो भी फल नहीं है, वो भी बीज है। आप फल देखना हो तो फिर सर्च करोगे तो आपको गूगल पर उसके फल देखने मिल जाएंगे, उसका पूरा पेड़ देखने मिल जाएगा आपको। इसी तरह पिस्ता है, पिस्ता फल नहीं है, पिस्ता बीज है। काजू है, काजू फल नहीं है, काजू बीज है। ये जो अपन खाते हैं या फिर मेवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो वस्तुतः फल ना होकर के बीज है। तो अब बहुत से लोग बीज को फल बोल करके चढ़ाते हैं, उनको जानकारी नहीं है, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं। अगर आपको फल ही चढ़ाना है तो फिर ये आम्र फल, द्राक्षा फल, कदली फल आदि ये बहुत सारे फल होते हैं। अथवा अगर आपको शुष्क फल चढ़ाने हो तो सूखे हुए जो फल होते हैं उनमें मुनक्का है, किशमिश है। बीज वाला अंगूर जो होता है उसको सुखा दो तो मुनक्का बन जाता है, और बगैर बीज वाला जो अंगूर होता है उसको सुखा दो तो किशमिश बन जाती है, और उसके दोनों रंग होते हैं, ब्लैक ग्रेप्स भी होते हैं और दूसरे वाले ग्रीन ग्रेप्स भी होते हैं, हरे और काले दोनों प्रकार के होते हैं, मुनक्के किशमिश वगैरह, ये पूरे फल है, अखंड है, वो बीज मात्र नहीं है, पूरा फल है। अब ऐसा होता है कि जो ड्राई फ्रूट्स वो लोग बोलते हैं अंग्रेज लोग, वो जो ड्राई फ्रूट्स है वास्तव में अंदर से खाने लायक है, इसलिए उसको वो फ्रूट्स संज्ञा दे देते हैं। पर यहां देखें तो आप जो असली फल है वो हम बता रहे हैं आपको, इलायची है, सूखी हुई होते हुए भी पूरी अखंड है और फल रूप है, उसमें से उसके दाने अलग नहीं किए हुए, बीज नहीं निकाले गए, वो पूरी इलायची जो है, चाहे डोड़ा इलायची हो बड़ी वाली या फिर वो छोटी वाली एला इलायची हो, हरी वाली जो इलायची होती ऊपर से थोड़ी हरित कांति होती उसमें, तो वो जो इलायची है वो भी अखंड फल है। इसी तरह जो खजूर का फल होता है, पिंड खजूर या फिर सामान्य खजूर, वो जब शुष्क हो जाता है तो वो खारक बन जाती है, जिसको छुहारा भी कहते हैं, वो भी पूरा अखंड फल है। उसके ऊपर आपको डंठल वाले स्थान पर वो एक जो जो जोड़ जोड़ने वाला एक हिस्सा है वो भी मिल सकता है, अंदर पूरा बीज है, आप ऊपर से उसका पूरा वो फल का हिस्सा भी है सूखा वाला, ये सारे फल है। और ये बादाम अखरोट सुपारी वगैरह ये कोई फल नहीं है, ये तो अंदर से उसको पूरा ऊपर के काम जो चीजें थी वो सब निकाल कर अलग कर दी, और फिर अंदर से वो उसकी गुठली अलग निकाल ली। अब अखरोट को देखो या फिर आप बादाम को देखो, आम के फल की गुठली को निकालकर लोग फेंक देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि अंदर भी काम की चीज है, अगर पता होता तो कोई फेंकता नहीं। और ये जो है ये काम की चीज है, इसमें से तेल भी निकलता है, इसमें से बहुत सारी चीजें तैयार होती है, बादाम पिस्ता और काजू और अखरोट और अन्य ऐसे जो मेवे हैं उनसे, ये वस्तुतः बीज है। अखरोट के तेल से और काजू के तेल से अनेक प्रकार के दर्द को ठीक किया जाता है, बादाम के तेल से सिर को और नासिका में अगर नस से प्रयोग करते हैं, रात में दो दो ड्रॉप्स डालते हैं तो साइनसाइटिस और सिर के दर्द वगैरह में बड़ा आराम हो जाता है, तो ये उपयोगी वस्तु होने के कारण है। अब अगर ये कहो कि नहीं उससे फल मिल रहा है, अपने फायदा हो रहा है, फल का अर्थ अगर फायदा ले लो तो फिर बराबर ये ड्राई फ्रूट्स है, फायदेमंद चीजें हैं, लेकिन अगर भगवान की पूजा के द्रव्य लो जो यहाँ पर धवला में लिखे हुए हैं तो फिर फल में वो चीजें आएंगी जो अभी अभी हमने बताई, जो सूखे फल भगवान को अर्पित करना पसंद करते हैं उनके लिए हमने वो बता दिए, और जो गीले पसंद करते हैं उनके लिए वो भी बता दिए, जिनको जो पसंद हो उनकी स्वतंत्रता है। यहां पर फल शब्द लिखा है, फिर गंध, और पूजा की पंक्तियों में अगर आप देखें फल का वर्णन तो कविवर पंडित ज्ञानत राय जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, शब्दावली का प्रयोग किया, लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार हूं, मुपे न उपमा जाय वर्णी सकल गुण फल सार। फिर आगे का कौन सा पद है, एक दो है ना, अति उच्चाह मन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन, तो वो फल बताया उन्होंने, कैसे फल है वो, लोचन आंखों को प्रसन्न कर दे, सुरसना अगर कोई खा ले उसको तो रसना प्रसन्न हो जाए, उत्साहित हो जाए, आह्लादित हो जाए, घ्राण यानी जिसमें से खुशबू भी आ रही हो। अब वो छिलके वाले बादाम में हमने आज तक कभी खुशबू नहीं देखी है लेकिन कई ऐसे फल होते हैं खुशबूदार फल होते हैं, तो यहां जो वर्णन है पूजा में वो खुशबूदार फलों का वर्णन, घ्राण और यानी अपना दिल, दिल खुश हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए, उत्साह के करता है, ये सब उत्साहित हो जाए, मोपे न उपमा जाए वर्णी, इतने उत्तम है कि मेरे को कोई उपमा नहीं सूझ रही, तुलना किससे करूं, उपमा का अर्थ तुलना करना होता है, मैं किससे तुलना करूं, इतने बढ़िया फल है, सकल गुण फल सार है, और सब गुण उसमें है यानी स्पर्श रस गंध वर्ण सब में श्रेष्ठतम। एक राज वैद्य से हमारी चर्चा हुई थी कि कौन सा फल श्रेष्ठ होता है, उनका नाम क्या था, धनशंकर गौरी शंकर वैद्य। उनके बाहर बोर्ड लगा था उनके यहां पर कि यदि यहां के निर्देशों का पालन न करना हो तो समय व्यर्थ न करें, नाड़ी न दिखाए वैद्य जी को, और आपको कोई रोग बताना नहीं है उनको, वो नाड़ी देखकर सब कुछ निश्चित कर लेंगे। और सचमुच बड़ा भारी वैद्य थे वो कुएं का छना हुआ पानी अपने हाथ से निकालकर ही जीवन भर लेते रहे अंत तक, और भोजन भी उनका एकदम सादा था, शुद्ध वस्त्र पहन करके पूरी विधि के साथ वो भोजन लेते थे, कड़क उनका अनुशासन था। उन्होंने फल के विषय में जो बात कही वो हम आपके साथ साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस फल को किसी कक्ष में रख देने पर और द्वार और झरोखे बंद करने पर उसकी सुगंध व्याप्त हो जाए, जो हाथ में पकड़ने पर भारी हो और छूने में कुछ सुखद स्पर्श वाला हो, और भारी हो, सुगंधित हो, सुखद स्पर्श वाला हो, और देखने में ऐसा लगे जैसे कुदरती है, कोई उस पर प्रोसेसिंग नहीं हुई है। जैसे केले जो होते हैं अगर पके हुए आपके सामने हो, तो हम उदाहरण केले का दे रहे हैं, एक केला हो, दोनों केले पके हुए हैं, लेकिन एक केला ऐसा है कि जिसकी खुशबू दूर से आती है और दूसरे की नहीं आ रही, वो कार्बाइड केमिकल के प्रयोग से जबरन पकाया गया है, प्रोसेसिंग करके वो नकली रूप से पकाया गया है, और ये असली पका हुआ है, सहज रूप से काल पक्व है, और इसके ऊपर जो देखने पर दोनों केलों में अंतर क्या है, तो उसमें आपको एक भी निशान नहीं मिलेंगे जो केमिकल वाला केला है, और इसमें आपको बहुत सारे काले 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 डॉट्स मिलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कुछ चिट्टे जैसे निशान मिलेंगे आपको बहुत सारे, गुजराती में उसको टिपके बोलते हैं, तो ऐसी पहचान उन्होंने बताई थी। तो यहां पर फल की बात ऐसी की है आचार्य महाराज ने। फिर फल के बाद क्या कह रहे हैं, वो गंध, गंध जो वो होती है वो चंदन को घिस करके तैयार की जाती है, थोड़ा जल रहता है उसमें, और चंदन को, केसर को, कपूर को घिस करके उसको तैयार करते हैं। पद्मनंदी पंचविंशिका में चंदन और कपूर तो उसमें बताई है, फिर उसको विभिन्न वर्णों में अगर आपको करना है, केसर के रंग का बनाना तो केसर मिला दी, और फिर और भी कुछ ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनसे आप वो एक अवलेह या अनुलेपन तैयार कर सकते हैं, उपटन कह सकते हैं जिसको, ऐसा उसको तैयार किया जाता है। फिर धूप, धूप के विषय में आचार्य वीरसेन स्वामी ने ही जय धवला में कहा है कि धूप जो होती है उसको खेना पड़ता है। कहाँ खेना पड़ता है, धूपदान में, एक छोटा सा अग्निकुंड जैसा होता है धूपदान, उसमें धूप को खेया जाता है, तो वो धूप दशांग धूप बड़ी प्रसिद्ध है, और उसकी बनाने की विधि वगैरह जो है उपलब्ध हो सकती है, शुद्ध धूप घर पर बन सकती है सामग्री ला करके, उसमें कपूर काचली और अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर चूर्ण मिलाए जाते हैं, अगर तगर चंदन आदि बहुत सुंदर सुंदर चूर्ण उसमें मिलाए जाते हैं, और उस धूप से सुवासित कक्ष में जो उपवास करने वाले होते हैं ना, बड़े बड़े उपवास करने वाले, उनको बैठालते हैं तो उनकी बेचैनी दूर हो जाती है, जो पित्त बढ़ता है, वमन जैसी इच्छा होती है, वो धूप से सुवासित कक्ष में उसको बहुत लाभ होता है। और दीवादि ही दीपक आदिक भी होते हैं। अब दीपक दो प्रकार के बताए, एक रत्न दीपक और दूसरा स्निग्ध दीपक। स्निग्ध दीपक में तेल अथवा घी का दीपक होता है। तो इन दीपकों से सद भक्ति पगासो, इनके माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करना, प्रकट करना, अर्चना नाम, इसका नाम अर्चना है। और एदाही सह, इन्हीं के साथ इंद्रध्वज, कल्पवृक्ष, महामह, सर्वतो भद्र आदि महिम विहान, ऐसे महोत्सव करना, सिद्ध चक्रादि, उसका पूजा नाम, उसका नाम पूजा है। यानी छोटी पूजा अर्चना है और बड़ी अर्चना पूजा है, जिसमें मांडना वगैरह बना करके बड़ी भव्यता के साथ महोत्सव पूर्वक भगवान की आराधना की जाती है, उसको पूजा कहा है। और जिसमें द्रव्य समर्पित करके अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, उसको अर्चना कहा है। द्रव्य दोनों में समर्पित करते हैं। तो मूलाचार ग्रंथ की जो गाथा थी उसमें ये कहा कि तीर्थंकर भगवान वंदना और नमस्कार के योग्य होते हैं, पूजा और सत्कार के योग्य होते हैं। सत्कार में पूजा के साथ साथ स्तुति को भी सम्मिलित करते हैं। भगवान ने जिन दोषों पर विजय प्राप्त की है उसका भी विवरण करते हैं, तो उसको सत्कार कहते हैं। यानी उसको जयमाला शब्द से भी जाना जाता है। जयमाला का अर्थ क्या होता है? भगवान ने जो विजय प्राप्त की है जिन कर्मों पर, जिन दोषों पर, जिन विकारों पर, उनका गुणगान करना, वो जयमाला है। तो जो इसके योग्य होते हैं, वंदना नमस्कार के योग्य होते हैं, पूजा सत्कार के योग्य होते हैं, और अरिहंत सिद्धि गुण, और जो सिद्धत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं, मोक्ष गमन के योग्य हो जाते हैं, वे इन तीन कारणों से भी अरहंता उच्चंती, अरहंत कहे जाते हैं। तो इस तरह ये मूलाचार ग्रंथ के आधार पर अपन ने आज थोड़ा सा देखा कि अरहंत शब्द में और क्या समाया हुआ है। अब तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं होती है, उन प्रतिमाओं में तिलोत्पन्नति ग्रंथ में एक वर्णन आता है कि हुंडाव सर्पिणी काल में 7, 23 और 24 क्रमांक के जो तीर्थंकर भगवान है, 24 ही में, वो भरत और ऐरावत दोनों क्षेत्रों के लिए कह रहे हैं कि ऐरावत वाले भी 7वें तीर्थंकर, ऐरावत वाले 23वें और ऐरावत वाले 24वें, भरत क्षेत्र वाले 7वें, 23वें और 24वें, तीन तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होता है, भयंकर उपसर्ग होता है। ऐसा उपसर्ग कोई, जिसको कोई सामान्य साधु सहन नहीं कर सकते, इतना प्रचंड उपसर्ग होता है। बहुत कोई बिरले ही साधु सहन कर सकते हैं, ऐसा उपसर्ग होता है उन पर। और उपसर्ग सूचक चिन्ह आपने देखे होंगे, सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर आपको 5 फणा मिलेंगे, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर आपको 7 9 11 आदि लेकर 1008 तक के फणा मिलेंगे। समझ रहे ना बात को? गोपाचल में जो पार्श्वनाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं उनके ऊपर 5 फणा है, इसलिए वो पार्श्वनाथ भगवान के रूप में पुनर्विचारणीय है, क्योंकि 5 फणा सुपार्श्वनाथ भगवान के बताए गए हैं। उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था सुपार्श्वनाथ भगवान के, और महावीर भगवान के ऊपर भी आपको अमरावती नगरी का, विदर्भ में अमरावती नाम का एक नगर है, उस नगर में, उस नगरी में जो परवार दिगंबर जैन मंदिर है वहां आपको मूलनायक आदिनाथ भगवान है। फिर आप अंदर प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद आप इस तरफ जाएंगे, आदिनाथ भगवान मूलनायक के बाईं तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको और भी वेदियां मिलेंगी। उसमें एक वेदी पर उद्भकायोत्सर्ग मुद्रा में श्याम वर्णी 24वें तीर्थंकर भगवान की फणायुक्त प्रतिमा मिलेगी। नीचे चिन्ह महावीर भगवान का सिंह का चिन्ह मिलेगा, ऊपर फणा मिलेंगे। तो कई बार लोग पूछते हैं कि महावीर भगवान पर फणा क्यों है, नीचे शेर का चिन्ह क्यों बना है? तो उसका समाधान यह है कि फणा जो है उपसर्ग प्रतीक है कि ये 3 तीर्थंकर ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनको मुनि अवस्था में उपसर्ग प्राप्त हुए। अब ये एक प्रतीक हो गया। दूसरी बात, केवल ज्ञान के बाद वो फणा होते हैं कि नहीं होते? जैसे पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में अपन देखें कि उन पर जब उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग होने पर क्या हुआ, देखिए उपसर्ग कैसे हुआ उसके बारे में हमने ये श्लोक निकाला। अक्षर साफ नहीं आ रहे संस्कृत के, भवन स चतुरो मासान छाद्मस्थेन विशुद्धि भाग। केवल ज्ञान से पूर्व पार्श्व जिनेन्द्र वाराणसी से 4 माह तक भ्रमण करते रहे मुनि अवस्था में, और विशुद्धि भाग, विशुद्धि को प्राप्त होते हुए विशुद्धि भाग भवन स चतुरो मासान छात्मस्थेन विशुद्धि भाग दीक्षा ग्रह वनी देव दारु भूरि महिरुह। 4 महीने तक वाराणसी में दीक्षा लेकर पार्श्वनाथ स्वामी मुनि अवस्था में, छद्मस्थ अवस्था में विशुद्धि को प्राप्त होते हुए, अपनी पवित्रता को बढ़ाते हुए, फिर भ्रमण करते करते दीक्षा ग्रह बने, जिस वन में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी उस वन में आ गए, और देव दारु भूरि मरी महिरुह, देव दारु नाम का जो बड़ा भारी महिरुह यानी वृक्ष था उसके नीचे अधस्ताद अधस्ताद अष्टमाहार त्यागादात विशुद्धिकः प्रत्यासन्न भवप्रांतो योगं सप्तदिनावधिं। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे अष्टमाहार त्यागात तेला के उपवास के साथ आत्मविशुद्धि का, बड़ी भारी विशुद्धि को प्राप्त किया उस वृक्ष के नीचे विराजमान होकर, और प्रत्यासन्न भव प्रांतो संसार के तट के निकट विराजमान होकर सप्त दिनावधिम योगम गृहीत्वा, सात दिनों की अवधि का उन्होंने ध्यान स्वीकार कर लिया। अब उपवास तीन दिन का लिया और सात दिनों की अवधि का ध्यान स्वीकार कर लिया, ऐसा हो जाता है। कई बार साधक जन संकल्प लेते हैं लेकिन उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि वो अवधि पार हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब तीन दिन निकल गए, सात दिन तक ध्यान में विराजमान रहे। अब क्या होता है, गृहीत्वा सत्व सारोस्थात धर्मीय ध्यान प्रवर्तयन शंबरोत्रांबरे गच्छ। ऐसा हो गया कि वो जब बैठे थे तो ऊपर से एक ज्योतिषी देव का विमान निकला और वो जो पार्श्वनाथ भगवान के नाना जी थे महीपाल, जिनने वो पंचाग्नि तप करते समय नाग नागिन के जोड़ों का विघात कर दिया था, जोड़े का वो कर दिया था, जल गए थे, फिर उस पर कुल्हाड़ी भी चला दी थी लकड़ी में, कहाँ है इसमें जीव, तो उसके अंदर से नाग नागिन निकले थे। और नाग नागिन कई बार ऐसा होता है कि वृक्षों में जो गड्ढे हो जाते हैं ना, उसके अंदर जाकर के वो वहां जो रेशे होते हैं अंदर, कई बार नारियल वगैरह के पेड़ में बहुत सारे रेशे होते हैं, उन रेशों को थोड़ा वैसे आगे पीछे करके वो अंदर घुस जाते हैं खोल में और पड़े रहते हैं, बहुत समय तक पड़े रहते हैं वो नाग नागिन। तो ऐसा कोई, ऐसी कोई बल्ली उनको मिल गई होगी लकड़ी की और उसको पंचाग्नि में वो जला रहे होंगे और अंदर वो घटना हो जाती है। तो वो जो महीपाल तापस थे वो अपनी आयु पूर्ण करके शंबर नाम के ज्योतिषी देव बने थे, उनका विमान इनके ऊपर आकर के अस्था रुक गया, स्थिर हो गया, और धर्म ध्यान में लीन थे पार्श्वनाथ भगवान। कोपमानो विभंगेन स्पष्ट प्रा वैर वंदन रोषाकृत महा घोषो महावृष्टिमपातयत। उस ज्योतिषी देव ने, शंबर ने विभंग ज्ञान से देखा नीचे कि कौन मेरे विमान को रोकने वाला है और स्पष्ट रूप से पूर्व वैर का बंधन जिसमें पड़ा हुआ था उस देव ने रोषात, रोष को प्राप्त होकर के क्रोध के कारण कृत महाघोष, भयंकर रूप से उसने आवाज निकाली, जोरदार आवाज निकाली और महावृष्टि में पात यद, भगवान के ऊपर भारी वर्षा गिराई। सात दिन तक वह उपद्रव करता रहा। तो तम ज्ञात्वा अवधि बोधेन और धरणीशो विनिर्गत, उस उपसर्ग को अवधि ज्ञान से, देखिए अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टियों के पास ही होता है, तो इस श्लोक से स्पष्ट है कि धरणेन्द्र सम्यक दृष्टि जीव जन्म काल में मिथ्यात्व रहता है, फिर थोड़ी देर में सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उस धरणेन्द्र ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरे उपकारी पर उपसर्ग हो रहा है और वो चट्टाने गिरा रहा है, एक पहाड़ गिराने को तत्पर है भगवान पर। उसने जान लिया विनिर्गत धरण्य, वो धरती से बाहर निकला और प्रस्फुरद रत्न फणा मंडप मंडित, प्रकाशमान रत्नों के फणा मंडप से मंडित भद्रं तमस्थाल आवृत्य तत्पत्नी च फणा तते ही उपर्युच्चे समुद्रित्य स्थिता वज्रातपच्छिदम्। उन प्रसिद्ध तीर्थंकर को इसका अन्वय थोड़ा लगाना होगा, पंडित पन्नालाल जी ने जो लगाया वो हम आपको पढ़ देते हैं। उसने पहाड़ तक भगवान के आसपास गिरा दिए थे और एक पहाड़ उनके ऊपर डालने वाला था सीधे भगवान के ऊपर। तो तब पत्नी च फणा कते, धर्णेन्द्र की जो पत्नी थी उसने भी फणाओं की पंक्ति बना ली और उससे फणा मंडप से उन्होंने भगवान के उपसर्ग का निवारण किया दोनों ने मिलकर के। ये केवल ज्ञान से पहले की घटना है, फिर इसके बाद क्या होता है वो और भी अनोखी बात है, उसको आगामी सत्र में देख लेंगे। जैनम जैत शासन इसका अन्वय हम बहुत सावधानी से भी और घटित करेंगे, क्योंकि आरती में और फिर अनुवाद में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, इसका एक बार सूक्ष्मता से अवलोकन कर लेंगे।